Lord Jesus, we come to you together after so many weeks.
और आसमानी बाप हम कई हफ्तों के बाद आज मिले हैं तो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं.
And we're going to continue through Romans.
और हमने ये रोमियो से अपना सफर का आगाज किया.
I ask that you would give us recollection of what we've studied in this book for its first four chapters.
और हम खुदा अजीम इस बात के लिए तेरे हुजूर दुआगो हैं कि इसमें हमें अपनी आगाही बख्श.
Use it to transform us.
और खुदा अजीम इसको इस्तेमाल कर ताकि ये हमारे लिए तब्दीली का वसीला बने.
To make us more like you.
और ये हमें तेरी तरह बनाने वाला बने.
In Jesus' name, amen.
मसीह के नाम से आमीन.
All right, well, it has been many weeks. It's good to see all of your faces.
और कई हफ्तों के बाद आपके चेहरों को देखना, खूबसूरत मसीह में इन चेहरों को देखना मेरे लिए खुशी का बाइस है.
Thank you for making some time to join us this evening.
और आज अपने मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे साथ इस मीटिंग में ज्वाइन होना हमारे लिए खुशी का वसीला है.
We're going to have to be a little bit shorter this morning than usual, but we'll be done here by 7:45 or so.
और हम ने आज इस कलाम का आगाज थोड़ा सा जल्दी किया है, लेकिन हम
I think that's 6:45 your time. Sorry, 6:45.
40 या उससे पहले इस कलाम का इख्तिताम करने की कोशिश करेंगे.
So we're in Romans chapter 5, and we're going to be beginning in verse 3.
और आज हम अपने कलाम का आगाज रोमियोस के 5 बाब और उसकी तीसरी आयत से शुरू करेंगे.
And so we have up here the verses on the screen, and I'm going to read verse 3 with you here this evening.
अब हमारे सामने स्क्रीन पर जो है वो खुदावंद के कलाम की आयात हैं. हम इसे स्क्रीन से पढ़ना शुरू करेंगे.
And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience.
और खुदा के कलाम में उसकी तीसरी आयत में लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है. आमीन.
And patience experience, and experience hope.
और फिर लिखा है, सब्र से पुख्तगी और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है.
And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which was given unto us.
और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह कुद्दस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है.
No one in the Christian faith will be perfected without suffering.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही ईमान में कोई शख्स भी मुश्किलात को बर्दाश्त किए बगैर एक अच्छा मसीही साबित नहीं हो सकता.
Jesus himself in his earthly life was not perfected without sufferings.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह बसीते खुद जो थे वो भी बहुत सी मुश्किलात से गुजरे ताकि वो एक मुकम्मल और खुद को एक कामल शख्स कर सके.
Now when we say perfected with Jesus, we don't mean perfected out of any sin.
और जब हम ये कहते हैं कि वो जो है वो मुश्किलात के बाद मुकम्मल हुए, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं था कि उनमें गुनाह भी था.
But that he as the author of salvation for us had to undergo death, resurrection, all of it to do it.
लेकिन नजात का मुसन्नफ बनने के लिए वो मौत और मौत की तमाम मुश्किलात में से गुजरे, वो मुर्दों मर गए और मुर्दों में से जी उठे.
So even Jesus endured suffering.
और यहां तक के मसीह खुदावन जो है वो भी मुश्किलात का शिकार रहा.
We will all suffer as believers, but not like the world.
اور ایک مسیحی ہونے کے ناطے دنیا کی طرح نہیں بلکہ ہم بھی دوسروں کی طرح جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں.
We don't suffer as those who cannot see it as a tool in God's hands to make us like Jesus.
اور مسیح کی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ کامل بننے کے لیے مشکلات سے گزرنا ہے.
Paul writes about his own suffering a lot in his letters. He talks about all that he suffered.
اور جو کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کا مصنف پولس رسول بھی اپنی بہت سی مشکلات کا ذکر کرتا ہے.
Many of us, despite the power that Paul walked in, would not want to be in ministry with that man.
اور بہت سے اشخاص جو ہیں وہ پولس رسول کی مشکلات کو دیکھ کر منسٹری میں نہیں آنا چاہتے.
Now, if God called us to it, just like him, he would have to sustain us in it. But it was a rough time very often.
اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر خدا نے آپ کو اور مجھے پولس رسول کی طرح مقرر کیا ہے تو وہ ان مشکلات میں ہمیں ثابت قدم بھی رکھے گا لیکن اکثر اوقات ہم جو ہیں وہ ان مشکلات میں مرجائے سے ثابت ہوں گے.
But Paul says of his own life that he glories in tribulations. That means he boasts about them.
لیکن پولس رسول یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی مشکلات میں جو ہے وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے گا.
This word tribulations here in English, I don't know what it is in Urdu.
اور یہاں جو مشکلات ہیں ان کے لیے لفظ tribulations انگلش میں استعمال ہوا ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ مشکلات کو اردو میں کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. یقینی طور پر مشکلات جو ہیں tribulation کے لیے اردو میں مشکلات کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
But that tribulation works, he said, patience.
لیکن یہ مشکلات جو ہیں یہ ہم میں صبر پیدا کرتی ہیں.
We all have need of patience.
اور ہم تمام کو ضرورت ہے کہ ہم صبر رکھیں.
And this is what God will send us to produce patience. He will send us tribulation.
اور اس لیے کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو خدا ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا کرتا ہے.
But it produces, if we are in Christ, things like hope and experience and glory.
لیکن اگر ہم خدا میں ہیں تو وہ ہم میں امید، ہم میں صبر اور پھر ہم میں اس کے نام کو جلال دینے کا کام کرتا ہے. وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے کہ ہم صبر رکھیں، امید رکھیں اور پھر خدا کے نام کو جلال دیں.
If you remember, one of the descriptions about Jesus that we get from the Psalms is that people would think he was stricken, smitten by God, and afflicted.
اور اگر آپ زبور کا مطالعہ کریں تو وہاں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ خدا کے ذریعہ سے، خدا کی سختی کے ذریعہ سے ان میں صبر پیدا ہوا.
Isaiah the prophet speaks about how we'll look at Jesus and think that he was cut off from God and cursed.
اور اگر ہم یسعیا رسول کی طرف اس کے صحائف کو پڑھیں تو وہاں خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح وہ مشکلات کا شکار ہوا اور پھر خدا نے اس کے اندر صبر پیدا کیا.
Then in Isaiah 53 we read in this description of Jesus the following.
اور پھر ہم یسعیا اس کا 53 باب اور اس کی 3 آیت میں یوں پڑھتے ہیں.
He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not.
اور پھر لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی.
This is a description 700 years before Jesus was born in Bethlehem of what people would think of him.
और हम यहाँ देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह से 700 साल पहले ये वो चीजें थी जो लोग उसके बारे में सोचते थे.
This is partly what it means that he himself was perfected through what he suffered.
और यहाँ लिखा है कि किस तरह वो अपनी मशक्कतों और जो है वो मुश्किलात को बर्दाश्त करके मजबूत हुआ.
Jesus was a man, 100% a human man.
और खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल तौर पर 100% एक इंसान भी थे.
Though he was always unchangeably 100% God.
और इसी तरह वो 100 मुकम्मल तौर पर एक खुदाई निजाम का हिस्सा थे.
And we know that he was, as verse 4 says, born, he bore our griefs, carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted.
और फिर हम चौथी आयत में देखते हैं, तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा.
And then this great verse five, but he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed.
और फिर पांचवी आयत में लिखा है जो एक खूबसूरत और मुकम्मल आयत है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं.
Isaiah, who wrote this book, the son of Amos, again wrote this 700 years before Jesus.
और यसाया अमोस का जो बेटा था, उसने इस किताब को खुदावंद यीशु मसीह की आमद से 700 साल पहले लिखा.
Because he was given a vision of Jesus before Jesus was born on earth, all the way back at his calling in chapter 6.
क्योंकि यसाया नबी के पास, अगर हम 6वें बाब का मुतालिया करें, तो एक रोया थी, एक रोया जो खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक उसने देखी, उसने उसको लिखा.
The chastisement for our peace with God was laid upon Jesus on the cross.
और वो हमारे ही गुनाहों के वसीला से सलीब पर मसलूब हुआ.
And it's that peace that we began with back in Romans chapter 5 verse 1 weeks ago.
और ये वो चीज है जिसका हमने मुताल्या रोमियो उसके 5 बाब उसकी 1 आयत में कुछ हफ्ते पहले किया.
It's what we're talking about today, continuing on in Romans 5.
और यही वजूहात हैं कि आज इसका जो इसको शुरू किए हुए हैं और आज हम इसके तीसरी आयत पर बात कर रहे हैं.
That's why Paul writes, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
और यही वजह है कि लिखा है, पर जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें, और हमारे पास जो है वो ईमान खुदा का इत्मीनान है.
This is because he was bruised for our iniquities and chastised and whipped for our healing and peace.
और ये इस वजह से है कि वो हमारे लिए घायल किया गया और वो फिर से जी उठा ताकि हमारे रोनों को जो है वो खुशी में बदले और दीगर तमाम चीजों को हमारे लिए तब्दील करे.
It is through the cross now that we, as he said in verse 2, have access by faith into this grace wherein we stand.
और जिस जगह हम खड़े हैं, जिसके वसीला से इत्मीनान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई हुई है, और ये उसके सलीब के वसीला से है.
And we look ahead, we look forward to all that Christ has died to purchase us, which is yet to come.
और हम बहुत सी चीजें जो हमें हासिल करनी है वो उसकी सलीब के वसीला से मुमकिन है.
And why all this is so important is that sometimes in our suffering, we can feel like it's an evidence that God has cast us off.
और यही वजहात है कि बाज़ुकात हमारी मुश्किलात में हमें यूं महसूस होता है कि खुदा हमें छोड़ चुका है, खुदा हमारे साथ नहीं रह रहा.
That God is displeased with us, that he is sending us away.
और अगर हम ऐसी बातें करते हैं तो खुदा इससे नाखुश होता है.
But that was not true in Jesus's case.
लेकिन मसीह के मामले में ये ऐसा नहीं था.
That was not true in Paul's case.
और ये पौलुस रसूल के मामले में भी सच नहीं था.
And I remind you that Paul's not just writing about himself here in Romans 5. He says that we glory in tribulations.
और यहाँ रोमियो में पौलुस रसूल खुद नहीं बल्कि रूह कुदस से इंस्पायर होता है और फिर वो ये कहता है कि हमें मुश्किलात में उसके नाम को जलाल देना है.
That God would use them to produce good fruit in our hearts and in our lives.
और खुदा ने उन लोगों को इस्तेमाल किया ताकि वो हमारी जिंदगियों और हमारे जो हमारी जिंदगियां हैं और ये जो दुनिया है उसके लिए अच्छा फल पैदा करें.
And so he reminds them in verse 5, the love of God has been shed abroad in our hearts, so we should not be ashamed.
और इसी वजह से वो ये फरमाता है कि उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती क्योंकि रूह कुदस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है.
In verse 5, we saw where Paul said the Holy Ghost was given to us. You see it there at the end.
और फिर हम इस आयत में देखते हैं कि रूह कुदस जो है वो हमारे लिए एक रहनुमा के तौर पर हमें दिया गया.
This really is another way to express what the whole of the Christian faith is all about.
और फिर ये हमें ये बताता है कि मसीही ईमान क्या है.
Christians are given the through grace the Spirit of God Himself.
और मसीहियों को खुदा का फल और रूह कुदस जो है वो इनाम के तौर पर दिया जाता है.
It is a promise that really does show the whole of the Christian faith.
और ये एक वादा है जो मसीही ईमानदारों को दिखाया जाता है.
I will share with you a quote here from Ephesians chapter 1.
और मैं इफिसियों उसके एक बाब से आपके लिए एक चीज आपके दरमियान बयान करना चाहता हूं.
That summarizes what we're talking about.
जो इस चीज की समरी करता है जो कुछ जिसके मुतलक हम बात कर रहे हैं.
In verse 13.
और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है.
He says to them, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise.
और 13वीं आयत में लिखा है और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए पाके मुअद्दा रूह की मोहर लगी. आमीन.
To receive the Holy Spirit himself, God himself, is to be a Christian.
और रूह कुदस को पाने के लिए, रूह कुदस आपके लिए मुहैया करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद मसलूब हुए.
The very moment anyone is born again, he or she receives entirely the Holy Spirit himself.
और आप में से मर्द या औरत जो कोई भी अभी इस वक्त मसीहत में पैदा होता है वो रूह कुदस को इनाम के तौर पर पाता है.
This is what Christ came to bring to the church, was this full ministry of the triune God in our lives.
और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से तीन सफाती जो हमारा खुदा है, जो खुदा है, वो इसलिए इस चर्च में, इस मसीहत में आया ताकि वो इन चीजों को हम पर ला सके.
And now we're going to go back for a moment here in verse 6 to so much of what he's discussed in the book, which is our sinfulness.
और यहाँ हमने छेवी आयत में अभी बात की है जो हमारी गुनाहगारी की वजह से था.
For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.
और छेवी आयत में लिखा है क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो आयन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर मोवा.
For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Are you there, brother?
और फिर सातवीं आयत में लिखा है किसी रास्तबाज.
So verse 8, but God commendeth his love toward us.
भी मुश्किल से कोई अपनी जो अपनी जान तक दे देने की.
Are we good? Internet holding up? Let me know if you can hear me. Hello, Imran. Hello. Hello, hello, hello.
Yes, brother. Yes, brother.
Oh,
sorry.
Okay. Yeah, okay. I hear you now. Should I continue?
Yes, yes.
Did you get to read verse 7?
Okay.
Okay, going on to verse 8. Or did you read verse 7? Sorry.
I have read verse 7, but I can okay. read again.
Okay.
Okay, I have read it before the signal problem was happened.
Okay.
Okay.
Well, let's go on to verse 8 then. But God okay. commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
और फिर आठवीं आयत में लिखा है लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मोवा.
So herein is the demonstration of God's love and his righteousness in his death for sinners.
और यहाँ हम देखते हैं खुदा की वो कामल मोहब्बत और उसका वो नेक दिली का जज्बा जो वो हम गुनाहगारों की खातर अपनी जान को मसलूब करता है.
Jesus didn't die for a righteous people, he died for a sinful people.
और खुदावंद यीशु मसीह एक नेक और रास्तबाज शख्स के लिए नहीं मरे बल्कि वो एक गुनाहगार और खुदा से दूर जो शख्स था उसकी खातर मरे.
And so we don't need to worry about whether or not God loves us. We can see it.
और हम चाहे खुदा से मोहब्बत रखें या ना रखें, फिर भी हम खुदा को देख सकते हैं.
He commended his love toward us. He placed it upon us.
और खुदा ने अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया. वो अपनी मोहब्बत का हुक्म हम पर करता है.
That while we were yet sinners, helpless, dead in our sin, Christ died to give us life.
और जब हम गुनाहगार थे, जब हम बेबसी की हालत में थे, जब हम परेशान थे, तो मसीह हमारे गुनाहों की खातर मोवा.
Notice in verse 6, he doesn't say that we had a little bit of strength.
और यहाँ छेवी आयत में पढ़े कि उसने ये नहीं कहा था कि हमारे पास थोड़ी सी ताकत थी, बल्कि वो ये बताता है कि हम कमजोर थे, हम हकीर और उस वक्त बेबस थे.
He says that we were without strength.
और यहाँ वो बताता है कि हम कमजोर ही थे, ताकत के बगैर ही थे, हमारे पास ताकत नहीं थी.
A dead person has no strength.
और एक मुर्दा शख्स के पास कोई कुवत नहीं होती, कोई ताकत नहीं होती.
We were without strength, we were hopeless, but Christ made us alive.
और जब हम मुर्दा थे जब हमारे पास ताकत नहीं थी तो मसीह ने हमको जिंदा किया और हमें कुव्वत बख्शी.
And so the Christian in life with Christ by the Holy Spirit rejoices.
तो फिर जिंदगी में मसीहियों की जिंदगी में मसीह रूह कुद्दस के वसीला से खुदा के नाम को जलाल बख्शते हैं.
Rejoices in tribulations.
और हमें जो है वो मुश्किलात के अंदर खुदा के नाम की हमद और सना करनी चाहिए.
We'll see more of this in the book of Romans, how clear it is that God uses suffering and trials in our lives.
और हम रोमियो उसके पांच बाब में और मजीद बेहतर तरीका से देखेंगे कि किस तरह वो अपनी मुश्किलात को हम पर आयां करता है.
And we all know that it's hard. None of us wants the suffering.
और हम ये जानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है. हम में से कोई भी मुश्किलात से गुजरना नहीं चाहता.
But if we could understand what Paul is telling us here, we would look at it very differently.
और अगर हम उस बात को सीखने की गौर करें जिसके मुतल्लिक पौलुस रसूल हमें बता रहा है तो फिर हम मुश्किलात को एक और नजरिए से देखेंगे.
We would ask him for grace when we need it in our times of suffering, but we would view that suffering in a different light.
और फिर हम खुदा से उसके फजल को मांगेंगे और एक और नजरिए और एक और रोशनी में एक और तनाजर में हम मुश्किलात को देखेंगे.
And remember why then in verse 5 he's reminding them to not be ashamed because the love of God has been shed abroad in their hearts.
और इसीलिए वो इस आयत में बताता है कि हमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बल्कि खुदा के का वो जलाल खुदा का वो फजल जो हम पर हुआ है उसके लिए उसकी हम दोसना करें.
So when you suffer, don't let the world tell you that it's because you're not a believer.
और आइए हम अपनी जिंदगी में इस बात को साबित करें कि जब वो मुश्किलात हम पर हों तो हम इस बात को जाहिर करें कि हम एक मसीही हैं और लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले ना हो.
I'll be teaching on this in about another hour at my church here in town.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्हीं चीजों पर मैं अपने शहर में जो मेरा चर्च है उस कलीसिया को इसके मुतल्लिक सिखाने को हूं.
There are many ways that God brings suffering into our lives.
और हम देखते हैं कि बहुत से तरीके हैं बहुत से ऐसे हालात पैदा होते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगियों में मुश्किलात आती हैं.
There are types of suffering for our sin or just in perfecting of our nature.
और हमारे पास बहुत सी किस्में हैं मुश्किलात की. एक तो हमारे गुनाह की वजह से मुश्किलात होती हैं और कुछ मुश्किलात हमें मजबूत करने के लिए होती हैं.
There are trials that come into our lives from outside the church and sometimes from our brothers and sisters inside the church.
और बाज कात हमारे पास जो मुश्किलात आती हैं वो चर्च के बाहर से वो कलीसिया के बाहर से हमारे बहन भाइयों से नहीं बल्कि दूसरे लोगों से हमें मिलती हैं. और बाज कात ये मुश्किलात हमारे बहन भाइयों से और हमारे चर्च के मेंबरान से होती है.
But in our salvation, Paul told us in Romans 5 here, we are to glory in tribulations.
और यहाँ पांचवें बाब में पौलुस रसूल इसी के मार्फत बताता है कि हमें मुश्किलात में खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए.
And so I'm inviting you to consider how precious it is and how dangerous to ask God to make you more like Jesus.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप इसको सीखें कि किस कदर ये खूबसूरत है और किस कदर ये मुश्किल काम है कि आप खुदा से कहें कि मुझे मसीह की तरह बना.
You will need patience to be like Jesus.
तो अगर आप मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो आपको मसीह की तरह सब्र रखना है.
And tribulations produce it.
और जो मुश्किलात हैं वो सब्र पैदा करती हैं.
And so if God is to produce patience in you, He will do it in part through tribulation.
और अगर खुदा आप में इस चीज को पैदा करता है तो अगर खुदा आपकी जिंदगी में मुश्किलात को हिस्सा बनाता है तो वो फिर सब्र को भी पैदा करता है.
Let's consider the counsel of Hebrews chapter 12 for just a moment.
और आइए हम अब्रानी उसके 12 बाब में जो हमारे लिए ताकीदी अल्फाज हैं जो तन्बीया है हम उसको जान सके.
And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him.
और फिर यहां लिखा है और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंत की तन्बीया को ना चीज ना जान और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो.
For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth.
और फिर लिखा है 6वीं आयत में क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तन्बीया भी करता है और जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगवाता है.
If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not?
और फिर 7वीं आयत में है तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तन्बिया नहीं करता.
But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons.
और फिर 8वीं आयत में है अगर वो तुम्हें तन्बिया ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हराम ज़ादे ठहरे ना के बेटे.
Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live?
और फिर 9वीं आयत में लिखा है इसके अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तन्बिया करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं.
For they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness.
और फिर 10वीं आयत में है वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुआफक तन्बिया करते थे मगर वो हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पकीजगी में शामिल हो जाएं.
One more verse. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby.
और 11वीं आयत में है और बिलफजल हर किस्म की तन्बिया खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है.
So don't feel like God does not love you when there's suffering. No, the love of God has been shed abroad in our hearts.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी आप मुश्किलात का शिकार हो तो ये ना समझे कि खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता.
And of course, we don't ask for suffering, but if we ask to be like Jesus, we can see that God disciplines and uses it to yield something in our lives.
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अक्सर औकात मुश्किलात के लिए दुआ नहीं करते मांगते नहीं हैं लेकिन अगर हम अपने आप को मसीह की तरह बनाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि मुश्किलात जो मसीह पर आई हमें भी उनका सामना करना है.
We're like gold being refined in a fire.
तो फिर खुदा हमें उस आग में से गुजारता है जो हमें पुख्ता करती है.
There is all eternity to come with God.
और तमाम अबदियत जो है वो खुदा की तरफ से आती है.
And no one as a Christian suffers in this life needlessly.
और कोई भी ऐसा मसीही नहीं है जो इस जिंदगी में जरूरत और मुश्किल को देखे ना.
There is great reward to come.
और इसका एक अजीम नाम है.
And of course, we pray for peace and we pray for joy and we pray for prosperity.
और यकीनन हम तरक्की के लिए, हम सरफराजी के लिए, हम जो है वो इत्मीनान के लिए और फिर अमन के लिए दुआ करते हैं.
And may God bring it to us all.
और फिर हम दुआ करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे लिए हों.
But our theology from Romans 5 shows us why we should glory in sufferings and in tribulations, just like Paul did.
और फिर रोमियोस का पांच बाब हमें बताता है कि क्यों अपनी मुश्किलात, अपनी मुसीबतों में उसके नाम को जलाल देना है, जिस तरह पौलुस रसूल ने जलाल दिया.
Because just like Jesus, they were able to look beyond the suffering to the glory that would follow.
और ये इस वजह से है कि हम भी उन चीजों को जो हमारी मुश्किल के वक्त में हमें नजर नहीं आती, हम उन पर निगाह करें जो हमारे लिए अनाम है.
So don't be ashamed.
तो फिर शर्मिंदा ना हो.
Lift up your heads.
तो अपने सरों को जो है वो आसमान की तरफ बुलंद करें.
When you suffer, lift up the hands which hang down and the feeble knees.
और फिर अपने उन हाथों को जो हमेशा झुक गिरे रहते हैं, उन्हें आसमान की तरफ उठा लीजिए.
God is over it all.
और खुदा आप सबसे ऊपर है और वो आपको सुनता है.
Let's pray and we'll close.
और आइए हम दुआ करें आज की इन मुश्किलात जो हमारी जिंदगी में हैं, वो परेशानियां जो हमको खुदा से दूर करने की वजह बनते हैं, उनके लिए खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि वो इसके जरिया से, मुश्किलात के जरिया से हमारी जिंदगियों में सब्र और इत्मीनान पैदा करता है.
Lord God, we're going to pray a very dangerous short prayer.
और खुदा अज़ीम, हम तेरे हुजूर एक मुख्तसर सी दुआ में एक बड़ी खतरनाक चीज जो हमें मसीह से दूर करती है, उसके लिए दुआ करते हैं.
Continue to make us more like Jesus.
और खुदा अज़ीम, हमें मसीह की तरह बनने की तौफीक दे.
Through the truth of your word,
तेरे कलाम की सच्चाई से,
in this fallen world in which we live,
और हमें इस घिरे हुई दुनिया में हमें उठा खड़ा कर अपने कलाम की सच्चाई से,
at this time in our short lives,
और इस वक्त हमारी मुख्तसर सी जिंदगी में,
make us good witnesses to this gospel,
और हमें अपनी अंजील के अच्छे गवाह साबित कर.
In Jesus' name, amen.
और मसीह के नाम से आमीन.